हरे कृष्ण। लेकिन मंगलवार भी है तो हर मंगलवार की तरह भगवत गीता का प्रवचन होता है। आठवें अध्याय की चर्चा चल रही है। इस आठवें अध्याय में हम 23वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं। ये आठवें अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। हम देख चुके हैं कि इस आठवें अध्याय में पहले दो श्लोकों में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे। जो भी कुछ अर्जुन ने सुना था 7वें अध्याय में, उसके आधार पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे। पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किए, उसके बाद वाले जो दो श्लोक हैं उसमें 7 में से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया और बाकी रहा एक प्रश्न। उस एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने बाकी 24 श्लोकों में दिया इस अध्याय के। तो वह 7वां प्रश्न है कि जो व्यक्ति आपकी सेवा करता है, मृत्यु के समय वो कैसे आपकी प्राप्ति कर सकता है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सब के लिए, इसलिए ये 8वां अध्याय भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताने वाले हैं कि इस भवसागर से मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु चक्र से छूटने के लिए कई तरीके हैं, और संक्षेप में भगवान ने इनका वर्णन किया हुआ है। तो हर मंगलवार की तरह आइए हम 8वें अध्याय के सारे श्लोक पहले पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु है, इसलिए तरह तरह के प्रवृत्ति के लोगों के लिए उन्होंने पथ बतलाए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने शास्त्रों में कहा है कि केवल भक्त बनो बस, और कोई दूसरा पथ तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ पथ है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भक्ति मार्ग को स्वीकार करेगा, क्योंकि ये बहुत सरल है और बहुत शीघ्र ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। सबसे ऊंची प्राप्ति केवल भक्ति मार्ग से होती है। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति से ही हे अर्जुन तुम मुझे जान पाओगे, और ऐसे जानने के बाद ज्ञातुम तुम मुझे देख पाओगे, दृष्टुम च तत्वेन तत्वतः तुम मुझे जान पाओगे, देख पाओगे। और जब तुम मुझे जानोगे देखोगे तब प्रवेष्टुम च तुम मेरे धाम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओगे। इस अध्याय के पिछले श्लोकों में हमने देखा है भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक जगत का वर्णन किया था और बताया था भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये जगत का निर्माण होता है, इसकी रचना होती है, फिर पालन होता है, उसके बाद में संहार होता है। और ये चक्र इसी तरह अनादि काल से चलते आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा था परस्तस्मात् भाव अन्यः अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह सर्वेश भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हे अर्जुन, ये जो धाम है, ये जो जगत है, भौतिक जगत, भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये नश्वर है। सृष्टि का सृजन होता है, फिर संहार होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन इस धाम के, इस प्रकृति के परे एक और धाम है, एक और जगत है, एक और प्रकृति है हे अर्जुन, जो शाश्वत है, सनातन है, जो कि इस अव्यक्त जगत के और व्यक्त जगत के भी परे है। और जब ये भौतिक जगत का नाश हो जाता है तो उस धाम का नाश नहीं होता है अर्जुन। तो फिर भगवान ने संक्षेप में उस धाम का वर्णन किया और अर्जुन से कहा कि हर एक व्यक्ति को इस धाम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। माम उपेत्ते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। इसी अध्याय में पहले भगवान कह चुके हैं, माम उपेत्य, जो मुझे प्राप्त करता है हे अर्जुन, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। किस जगत में? इस दुख भरे जगत में। दुखालयम अशाश्वतम, हे अर्जुन, ये जगत केवल दुख का आलय है और ये क्षणिक है, इसलिए जो मुझे प्राप्त करता है उसे पुनः इस दुख भरे संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। न आप्नुवन्ति महात्मानः, ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं जिन्होंने जीवन की संसिद्धि को प्राप्त कर लिया है। कई मंगलवार पहले हम भगवान के इस धाम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भगवान का धाम कैसा है, वहां पे क्या होता है, वहां पे किस तरह के लोक हैं और वहां जीव क्या करते हैं, किस तरह से भगवान की सेवा करते हैं, दिखने में कैसे हैं, ये लोक कितने हैं, लंबाई चौड़ाई में कितने बड़े हैं, ये सब हम चर्चा कर रहे थे। तो उस धाम को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उस धाम को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? ये भौतिक जगत से सभी दूर होना चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान के धाम को या सच्चे आनंद को इस भौतिक जगत में ढूंढना चाहते हैं, ये हमारी गलती है, जबकि यहां पर ये चीज असंभव है। हम भौतिक जगत में उस चीज को ढूंढना चाह रहे हैं जो यहां उपलब्ध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जाकर पानी को लिए ढूंढे, पानी के तालाब के पास रह रहा हो और पानी के तालाब को छोड़कर, गंगा जी को छोड़कर रेगिस्तान में जाए और कोई पूछे कि भाई साहब आप कहां जा रहे हैं, मैं पानी ढूंढने जा रहा हूं, अरे पानी तो तुम्हारे पास में है, रेगिस्तान में कहां मिलेगा पानी? उसी तरह से सच्चा आनंद तो भगवान के धाम में है, भगवान की सेवा में है। हम सब भगवान के धाम को छोड़कर आए हैं इस रेगिस्तान में जिसको हम भौतिक जगत बोलते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर हम भगवान को भूल चुके हैं, ये भी भूल चुके हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक और धाम है, जैसे कि यहां भगवान बता रहे हैं। कई लोग पूछते हैं क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि ऐसा कोई धाम है, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि सबूत समझने वाला कौन है, प्रमाण समझने वाला व्यक्ति कौन है? प्रमाण समझने वाले व्यक्ति के लिए भी कोई योग्यता चाहिए। हमें दिव्य चक्षु चाहिए भगवान के धाम को देखने के लिए, नहीं तो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें विशेष दूरबीन चाहिए उसे देखने के लिए। तो ठीक उसी तरह से भगवान को धाम, भगवान के धाम के बारे में हमें जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ऐसे ग्रंथों का हमें श्रवण करना चाहिए जिसमें कि भगवान ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है जो कि अपौरुषेय है, मतलब किसी साधारण पुरुष से नहीं आता, यह स्वयं भगवान से आता है और यह त्रुटियों से मुक्त है, दोष मुक्त है यह ज्ञान। यहां हम संशोधन करके जो ज्ञान का निर्माण करते हैं हमारे विज्ञान की पद्धति के अनुसार, वो दोषपूर्ण है, बहुत सारी त्रुटियां उनमें हैं, इसलिए हम देखते हैं कि ये ज्ञान बदलता रहता है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये कभी बदलता नहीं है। भगवद गीता जैसे पहले थी वो अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। इसलिए यहां पर भगवान ने जो इस अध्याय में बताया है हम कैसे उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान ने योगियों के लिए, जैसे अष्टांग योगी हैं, कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, इनके लिए भी थोड़ा पथ दिया है। तो इन श्लोकों में भगवान उनके लिए भी मार्ग बतला रहे हैं। 23 से 28वें श्लोक में इस अध्याय के भगवान ने यह बताया है कि कैसे इस देह को त्याग कर एक व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और 23 से 26वें श्लोक में, इन चार श्लोकों में खास करके उन्होंने उन लोगों के बारे में, उन साधकों के बारे में बताया है जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं है, वो योगी हैं। जैसे कि अष्टांग योगी हैं, हठ योगी, आपने देखा होगा तस्वीर उनके बारे में, लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, जटाए होते हैं, ध्यान में हिमालय में बैठते हैं, बहुत सारे तपस्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम इत्यादि, ध्यान धारणा समाधि। ये अष्ट अंग योग, ये आठ अंगों वाले योग पद्धति को स्वीकार करते हैं और फिर आखिर में वो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में यहां भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 23। यत्र काले त्वन वृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों, मतलब भगवान श्री कृष्ण अभी इन अलग अलग योगियों के बारे में बताने वाले हैं। भक्तों के बारे में वो अंतिम दो श्लोकों में बात करेंगे, 27वें और 28वें श्लोक में। पहले भी वो शुद्ध भक्तों के बारे में बात कर चुके हैं। कई तरह के योग पद्धति हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, और इन पद्धतियों को स्वीकार करने वाले जो लोग होते हैं इनको योगी कहते हैं। जो व्यक्ति अष्टांग योग की पद्धति को स्वीकार करता है उसको अष्टांग योगी कहते हैं। इसी तरह से कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, भक्त योगी है। तो इन सारे योगियों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमां समय युक्त तमो मतः। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इन सारे योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो सदैव मेरा भक्ति भाव से चिंतन करता है, श्रद्धा से, श्रद्धावान भजते योमां, मेरा भजन श्रद्धा पूर्वक करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है इन सारे योगियों में से। इतना होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में केवल भक्ति योग के बारे में नहीं बात किया है, अनेक योग पद्धतियों के बारे में बात किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि ये अलग अलग पद्धतियां भी उपलब्ध हैं उन जीवों के लिए जो कि मेरी सीधे शरण नहीं लेना चाहते हैं। हर एक जीव के पास स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का उपयोग या दुरुपयोग करके जीव भगवान के शरण में आ सकता है या नहीं आ सकता है। भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं। अलग अलग तरह के मनोवृत्ति के लोग हैं ये संसार में, है ना? एक समान लोगों की बुद्धि नहीं होती है, तो अलग अलग वृत्ति के लोगों के लिए भगवान ने अलग अलग पथ बतलाए हैं। ठीक है, तुम सीधे मेरे पास नहीं आना चाहते हो, टेढ़े आ जाओ, तुम्हारे लिए लंबा पथ देता हूं। अगर यहां से हमें हुबली जाना है तो एक सीधा पथ है। अगर कोई व्यक्ति कहेगा हमें सीधे पथ से नहीं जाना है, हमें हैदराबाद होकर बेंगलोर होकर फिर आना, ठीक है, उसके लिए भी रास्ता है। पहले हैदराबाद जाओ, फिर बेंगलोर जाओ, कहां जाना है जाओ, फिर आ जाओ हुबली, ऐसे भी पथ है। तो जिसको जाना ही है क्या कह सकते हैं आप उसको? वो कहता नहीं मुझे जाना है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं सीधे मेरे पास अगर आना है बहुत सरल उपाय है, मेरा भजन करो। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वे न प्रवेशतुम च परंतप, मेरी भक्ति करके तुम मुझे देखोगे, जानोगे, मेरे पास लौट के आएगो, आओगे। सीधा रास्ता, आसान सुलभ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं मुझे सीधा रास्ता नहीं लेना है, तो ठीक है, भगवान कहते हैं देखो ये अष्टांग योग है, ये ज्ञान योग है, ये कर्म योग है, ये अलग अलग तरह कर्म कांड है, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे तुम पथ स्वीकार करो। फिर लोग अलग अलग पद्धतियां स्वीकार करते हैं, इसलिए गीता में भी भगवान ने इन पथों को बतलाया है, ज्ञान दिया है केवल, इसीलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि हम इन पथों को स्वीकार करें, केवल इतना बतलाने के लिए कि देखो ये पथ कितने कठिन है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही कतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। 12वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग केवल निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ये दुख की गति है। क्लेश अधिक तरह तेषाम, बहुत अधिक क्लेश होता है अगर हम भगवान की निराकार की प्राप्ति करने का प्रयास करें तो। तो भगवान बताना चाहते हैं कि देखो तुम स्वीकार कर सकते हो अन्य पद्धतियां तुम्हें चाहिए तो, मैंने तरह तरह के पद्धतियां दे रखी हैं तुम्हारे लिए, जो पथ चाहे तुम स्वीकार करो। लेकिन अर्जुन मैंने तुम्हें सबसे सरल पथ बतलाया है, लेकिन अन्य पथों का ज्ञान भी दे रहा हूं ताकि इन अन्य पथों की जानकारी प्राप्त करके तुम समझ लोगे कि देखो भक्ति कितना सुलभ है, कितना आसान है, और कितने जल्दी से हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तुलनात्मक दृष्टि से भगवान ने यह ज्ञान यहां पर दिया है ताकि हम जान लें कि भक्ति ही ठीक है, जहां हम हैं वही ठीक है। लेकिन इस बात को कई लोग नहीं समझते हैं और इसलिए वो कई तरह के भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, और इसलिए कई लोग कहते हैं हमारा मत है कि भगवद गीता का सार है अष्टांग योग। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध गीता की टीका है जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पालन तो नहीं करते, पढ़ते तो है, और वो अष्टांग योग की दृष्टि से है, छठे अध्याय के ऊपर टीका है। तो उस टीका के अनुसार गीता का सार अष्टांग योग है, अष्टांग योग सबसे ऊंची पद्धति है। कई और लोग हैं जो कहते हैं कर्म योग ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है, हम कर्म योगी हैं। और कई लोग कहते हैं अजी नहीं ऐसा नहीं, ना कर्म योग भी नहीं, अष्टांग योग भी नहीं, सबसे ऊंचा ज्ञान योग है, ये बुद्धिमान लोगों के लिए है, भक्ति भावुक लोगों के लिए है, अष्टांग योग वो कसरत प्रिय जो लोग हैं उनके लिए है, और ये कर्मयोग क्या वो जो केवल परिश्रम करना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन बुद्धिमान लोगों के लिए ज्ञान योग। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से टीका देता है कि ये श्रेष्ठ मार्ग है, ये श्रेष्ठ मार्ग है, वो है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान का मत महत्वपूर्ण है। भगवान ने तो कहा है कि भक्ति योग का पथ ही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं केवल सबसे आसान है लेकिन सबसे जल्दी भी हम हमारे गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर भगवान योगियों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, और हमें भी सुनना चाहिए ताकि हम जान सकें कि योगियों के लिए कितनी परेशानी है अगर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं। तो भगवान यहां बता रहे हैं, वक्ष्यामि, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं हे भरत ऋषभ, हे भरत वंशी, मैं तुम्हें वो ज्ञान देने वाला हूं, प्रयाता यान्ति तम कालम, जब व्यक्ति अपना देह त्याग देता है, यत्र काले, जिस समय पर वो त्याग देता है तो उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो योगी वापस ये संसार में लौट के आएगा या नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति योग पद्धति को स्वीकार करता है, खास करके ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि, अगर उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है तो उनको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है कि किस क्षण पे मैं मेरे देह को त्याग करूंगा, क्योंकि ऐसे खास समय बताए गए हैं जिनका वर्णन आने वाले दो श्लोकों में भगवान करने वाले हैं। अगर इन समय पे, खास इन क्षणों के ऊपर हमने प्राण त्याग दिया योजना से या गलती से भी, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन समय पे प्राण नहीं त्यागा तो फिर क्या होगा, फिर हमें यहां पर लौट के आना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें उन कालों का, उन समयों का ज्ञान देना चाहता हूं जिसके ऊपर किसी योगी को प्राण त्यागने के समय वो लौट कर आएगा या तो नहीं आएगा। तो देखिए कितनी कठिन बात है। इसका मतलब यह है कि अष्टांग योगी को चाहिए कि वो इतना निपुण बने अपने योगाभ्यास में कि वो अपने मृत्यु का समय बराबर चुन ले कि इस महीने में, इस साल में, इस दिन पर, इस समय पर, ठीक इस क्षण पर मैं मेरे प्राण को त्यागूंगा। और तब वो जब प्राण त्यागेगा फिर वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। लेकिन ये आसान है क्या? साधारण आदमी के लिए आसान है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना प्लानिंग कर सकता है? हाँ, प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन योजना को सफल बनाना ये बहुत कठिन बात है। और अगर वो योगी इतना निपुण नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा बहुत कच्चा है और गलत समय पर उसका देहांत हो गया तो पुनः आना पड़ेगा इधर। इसलिए योगी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं है। भक्त के लिए कोई परवाह नहीं है। भक्त कभी भी अपना प्राण त्यागे, समय देश काल पात्र कोई सीमा नहीं। अगर वो धाम में त्यागे बहुत अच्छा, मंदिर में त्यागे बहुत अच्छा, नाम लेते समय त्यागे बहुत अच्छा, भक्तों के संग में रहते हुए त्यागे बहुत अच्छा। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान का नित्य स्मरण करते रहते हैं, इसलिए चाहे वो रेगिस्तान में प्राण त्यागे या वो किसी ट्रेन में कहीं भी त्यागे, उसके लिए कोई शुभ और अशुभ गति नहीं है, वो तो सीधे भगवान के धाम में ही जाने वाला है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्वेच्छा से उन्होंने कलकत्ता में अपना प्राण त्यागा, जबकि वो आसानी से मायापुर जा सकते थे जो कि सबसे पावन भूमि है, वो वृंदावन जा सकते थे, वो जगन्नाथपुरी जा सकते थे जो कि कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा मैं ऋण भूमि में प्राण त्यागना चाहता हूं। तो हम पूछेंगे कौन से युद्ध चल रहा है कि ऋण भूमि में, कलकत्ता ऋण भूमि कौन सी बन गई? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार के भाव में थे, वो चाहते थे कि न केवल हमें जाना चाहिए भगवान के धाम में, लेकिन सारे जगत को हमें लेकर जाना चाहिए, हमें इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए कि उनके सभी लोग भक्त बन जाएं, सभी लोग कृष्ण भक्त होकर गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक की प्राप्ति करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, भारत भूमि तो जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिन लोगों का भारत भूमि में जन्म हुआ है उनको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और प्रचार करके अन्यों का जीवन भी सार्थक करना चाहिए। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा हो गुरु तार ए देश। जिसे भी तुम देखोगे उसको कृष्ण का उपदेश दे दो, और इस तरह से इस ज्ञान को देखकर सबको इस भवसागर से तार लो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की यह भावना थी, मैं अकेला जाके धाम में प्राण त्यागूंगा और इधर कितने सारे लोग भवसागर में पड़े हुए हैं, कृष्ण भक्ति से विहीन हैं। तो इसलिए वो एक सबक सिखाना चाहते थे हम लोगों को कि ऐसा नहीं कि हम केवल इस जगह को छोड़कर वृंदावन चले जाएं, मायापुर चले जाएं, सोचें कि चलो अभी हमें यहां नहीं रहना है, प्रचार नहीं करना है, सेवा नहीं करना है, हम जाके धाम में रह जाएं, बाबा जी बन जाएं। प्रभुपाद जी स्वयं 70 साल की आयु तक वृंदावन में रहे, लेकिन 70 साल की आयु में जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से रहना चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, उन्होंने कष्ट लेना शुरू किया, वृंदावन धाम को छोड़ दिया। हां, हृदय में वृंदावन धाम हमेशा उनका था, लेकिन शारीरिक दृष्टि से वृंदावन से दूर चले गए और अमेरिका गए, ऐसे देशों में गए, ऐसे लोगों के बीच में गए जहां कोई संस्कृति नहीं थी, ऐसे समय पर गए जब उनका शरीर बहुत कमजोर था, बुढ़ापा था, कोई भरोसा नहीं था कि कल कहां से भोजन मिलेगा, लेकिन फिर भी वो गए प्रचार की दृष्टि से। तो इस तरह से भक्त के लिए कोई परेशानी नहीं, भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं रात्रि में मरूंगा या सुबह में मरूंगा, शाम को मरूंगा, बेलगाम में या बाहर या किधर, नहीं, कोई परवाह नहीं। भक्त को केवल यह सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण कर सकूं, क्योंकि भगवान ने इसी अध्याय में पहले तो कह दिया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशयः, कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है, ये बिना संशय के जान लो हे अर्जुन। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उनको बहुत सोचना पड़ता है कि किस समय पे हम त्यागेंगे। अर्जुन ने शायद अपने मन में विचार किया होगा, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हे कृष्ण, तुमने तो यह बताया है कि शुद्ध भक्त, क्योंकि वो आपका स्मरण नित्य करता है, वो आपके धाम को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अन्य योगियों की गति कैसी होगी, वो किस पथ से होकर जाएंगे अपने गति को। वैसे जो अन्य देवयान देवताओं के पथ हैं, वो पथ तो सत्वगुण में है, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो सत्वगुण में नहीं होता, वो सत्वगुण के भी परे होता है, वो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होता है, तो वो कौन से पथ पे जाता है और जो अन्य योगी हैं वो कौन से पथ से जाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक कहा, और फिर अभी अगले श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान वर्णन करने वाले हैं उस समय का या उन समयों का जिसमें योगी लोग जब प्राण त्यागते हैं तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर देते हैं, और ये श्लोक खास करके ज्ञान योगियों के लिए है, जो निराकार ब्रह्म में जाना चाहते हैं उनके लिए ये गति है और ये श्लोक है। तो आइए ये श्लोक हम साथ में पढ़ते हैं। अग्नि ज्योतिर अह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः अग्नि ज्योतिर अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कृपया दोहराइएगा, जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब आत्मा शरीर को त्याग करता है तो ऐसा नहीं है कि आत्मा जहां चाहे वहां जा सकता है, नहीं। कर्मणा दैव नेत्रेणा, दैव मतलब भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक देवता हैं जो आत्मा को संभालते हैं, सूक्ष्म शरीर को। आत्मा की अगली गति कौन सी है, कौन से कर्म किए हैं इस जीव ने, यमलोक में यमदूतगण और यमराज के जो सहायक हैं वो हमेशा लिखते रहते हैं हमारे पाप पुण्य इत्यादि, और जब मृत्यु का समय आ जाता है तो फिर यमदूत आते हैं और जीव को खींच लेते हैं शरीर से, और उसके बाद में जब आत्मा को अगले गति में जाना पड़ता है तो अनेक देवतागण होते हैं जो कि चार्ज लेते हैं, उनके अध्यक्षता में आत्मा को अलग अलग स्थानों में जाना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसा नहीं है कि आत्मा को मुक्त छोड़ा जाता है, शरीर त्याग दिया फिर आत्मा कहीं भटक रहा है, घूम रहा। वो केवल उन प्रेतों के लिए, भूत प्रेत पिशाचों के लिए होता है जिन्होंने बहुत पाप किए हों, जैसे आत्महत्या इत्यादि, तो उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता है, तो उनको ऐसे शरीर मिलते हैं, ये एक दंड है, क्योंकि ऐसे शरीरों में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन है, इच्छाएं होती हैं भोग करने की, लेकिन भोग करने के लिए कोई स्थूल शरीर चाहिए, हाथ पैर चाहिए, आंख चाहिए, कान चाहिए, जिह्वा चाहिए, ये सब चीजें नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उठ नहीं सकता लेकिन खाना चाहता है, डॉक्टर कहता है मत खाओ, कितना तड़पता है बेचारा। उसी तरह से जब जीव को केवल सूक्ष्म शरीर मिलता है, स्थूल शरीर नहीं मिलता है, तो बहुत तड़पता है। लेकिन अन्यथा इसके अलावा आत्मा को अलग अलग गतियों में जाने के लिए देवता होते हैं जो रखवाले करते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, यहां से ले जाते हैं दूसरे गति तक। तो यहां पर एक पथ के बारे में बताया जा रहा है, या अनेक पथों के बारे में, लेकिन इन अनेक पथ जो हैं इनको एक शब्द में कहा जाए तो देवयान कहते हैं। देवयान मतलब देवताओं का पथ, जिससे कि शुक्ल गति की प्राप्ति होती है। शुक्ल गति मतलब प्रकाश की गति। कैसे गति है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म विदह, मतलब जो परब्रह्म के ज्ञाता है, खास करके जो ज्ञान योगी है, जो निराकार ब्रह्म को जानते हैं, उनको निराकार ब्रह्म की प्राप्ति है होती है। ब्रह्म ब्रह्म विदह, और कैसे होता है, अनेक पथों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अग्नि का पथ, फिर दूसरा ज्योति का पथ, तीसरा दिवस का पथ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। शुक्ल पक्ष और फिर शन मासा उत्तरायणम, फिर उत्तरायण के समय छह महीनों में जब इन चीजों का प्रभाव होता है और ऐसे क्षण पे जब व्यक्ति त्यागता है तो निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, ये भौतिक ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए भगवान ने 33 करोड़ देवी देवता बनाए हैं, तो हम सोचते हैं कि इतने देवी देवताओं की क्या जरूरत है ना? थोड़े हवा के लिए है, पानी के लिए है, अग्नि के लिए है, सूर्य के लिए है, चंद्र के लिए है, बस हो गए, थोड़े बस 15-20 होंगे, बाकी और किसके लिए है? लेकिन शास्त्रों में बताया जाता है कि हर एक दिवस के लिए एक देवता है, हर एक रात्रि के लिए एक देवता है, अलग अलग दिवसों के लिए अलग अलग देवता, 6 महीने के, हर एक महीने के लिए एक देवता है, 6 महीने के लिए देवता है, हर एक साल के लिए एक देवता है, अग्नि के लिए देवता है, ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए देवता है, ऐसे हर अलग अलग चीजों के लिए, समयों के लिए देवी देवता होते हैं। और ये जो अधिष्ठाता देव हैं, इनके पथ में चलने वाले जो जीव होते हैं वो अंततः निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे जो ज्ञान योगी होते हैं, सबसे पहले तो प्राण त्यागने के समय अग्नि देव, जिनको अर्चि कहते हैं, जो कि अग्नि और प्रकाश के अधिष्ठाता देव हैं, वो आत्मा को संभालते हैं और उनके पथ में ले जाते हैं। अग्नि ही ज्योति ही, और अग्नि देव जो कि अर्चि हैं, फिर आगे चल के उस देवता के हवाले कर देते हैं आत्मा को, जो कि उस दिवस के अधिष्ठाता देव हैं, जिस दिवस पर उस जीव ने शरीर त्याग दिया है, फिर वो देवता और थोड़ी देर ब्रह्मांड के अंदर उसको ले जाता है, फिर आगे चल के और एक देवता को देता है जो शुक्ल पक्ष का अधिष्ठाता देव है। आप जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा में क्या होता है, चांद की रोशनी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, इसलिए इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि चांद की रोशनी कम होती जाती है। तो शुक्ल पक्ष के लिए एक देवता है, कृष्ण पक्ष के लिए एक देवता है। तो फिर उस दिवस के देवता जो हैं, वो उस आत्मा को लेकर इस शुक्ल पक्ष के देवता के हवाले कर देते हैं, फिर वो देवता आत्मा की जिम्मेदारी लेते हैं और वो ब्रह्मांड में और आगे उसको ले जाते हैं, और फिर आते हैं वो देवता जो कि 6 महीने के देवता हैं। जिस तरह से वैसे हर महीने में 2 भाग होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी तरह से हर साल में 2 विभाजन होते हैं, 2 पक्ष, एक को कहते हैं उत्तरायण और दूसरे को कहते हैं दक्षिणायन। उत्तरायण क्या है? उत्तरायण वो समय है जबकि सूर्य पृथ्वी के दृष्टिकोण से आकाश में सबसे दक्षिण भाग में है, और दक्षिण भाग में से अभी उत्तर के लिए प्रयाण जो है शुरू कर रहा है, यात्रा शुरू कर रहा है, मकर संक्रांति से शुरू होता है, और फिर चलते 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 6 महीने ऐसे सूर्य ऊपर चलते रहता है आकाश में, और 6 महीने के बाद सूरज उत्तर की दिशा में ऐसे जगह पहुंचता है कि इससे आगे उत्तर दिशा में नहीं जाएगा, फिर अभी लौट के सूरज दक्षिण की ओर आएगा, तो वो उस समय से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो उत्तरायण के 6 समय हैं, 6 महीने, और दक्षिणायन के 6 महीने। तो उत्तरायण के भी एक देवता होते हैं। तो फिर ये जो देवता हैं, जो कि शुक्ल पक्ष के देवता, वो फिर उत्तरायण के देवता को, वो आत्मा को दे देते हैं, और वो उत्तरायण के देवता फिर आगे ले जाते हैं। इस तरह से जो इस तरह के ज्ञान योगी होते हैं, जो अपने ज्ञान योग में परिपक्व हो चुके हैं, जब वो शरीर त्यागते हैं तो ये अलग अलग देवता क्रम से उनको संभालते हैं। एक देवता थोड़ी दूरी तक ले जाते हैं, दूसरे देवता को देते हैं, दूसरे देवता और थोड़ी दूरी पर ले जाते हैं ब्रह्मांड में, और फिर तीसरे के हवाले कर देते हैं। ऐसे एक लिंक बन जाता है, और ऐसे आत्मा को ले जाकर अंततः इस ब्रह्मांड के बाहर भेजा जाता है, फिर वो निराकार ब्रह्म में चले जाता है। ये पद्धति है। ये योगियों के लिए पद्धति है। देखिए, इसके लिए एक सबसे पहले चीज क्या चाहिए कि प्राण त्यागना चाहिए उत्तरायण के समय। दूसरी बात, शुक्ल पक्ष में त्यागना चाहिए। तीसरी बात, किसी शुभ दिवस पर त्यागना चाहिए और उस शुभ दिवस पर किसी शुभ घड़ी पे, किसी शुभ क्षण पे त्यागना चाहिए और वो होना चाहिए प्रकाश के समय, दिवस के समय, रात्रि के समय नहीं, जबकि इन देवताओं का प्रभाव रहता है अर्ची। उस समय पर अगर कोई अष्टांग योगी या ज्ञान योगी अपना प्राण त्यागेगा तो वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने गलती से भी अगर यह समय में प्राण त्याग दिया फिर भी वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, लेकिन किसे मालूम कौन सा वो शुभ घड़ी। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे, क्या गणित से करेंगे सब, हाँ ये घड़ी आएगी फिर हम प्राण त्याग करेंगे, नहीं हो पाएगा। वैसे कोई आदमी सोचेगा ठीक है मैं इस घड़ी में आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन हो सकता है कि आत्महत्या करने से भी हम मरे नहीं, क्योंकि हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम शेर हैं तो भगवान सवास तो हमें धोखा दे देंगे। अगर हमारे भाग्य में नहीं है कि हमारी मृत्यु होनी है आत्महत्या से, तो जितना भी हम कोशिश करें आत्महत्या नहीं होगी। जैसे हमने एक बहुत ही विचित्र अद्भुत घटना के बारे में पढ़ा था कई साल पहले अखबारों में, अमेरिका में एक इमारत है 100 मंजिल की, 100 से भी ज्यादा, और एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की चेष्टा की थी, 80 नंबर के मंजिल से बाहर कूद पड़ा। और आप जानते हैं 80 माले से कोई कूदेगा तो नीचे आएगा तो क्या उसका चांस है बचने के लिए, तो कूद पड़ा। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हवा ने उसको धक्का मारकर नीचे किसी मंजिल में खिड़की तोड़कर उसको अंदर डाल दिया। और बेचारा कोई ऑफिस में बैठा था, उसके घर में बैठा था कोई नीचे मंजिल में, उसके घर के अंदर वो आदमी आ गया खिड़की से। देखिए, तो हम जबरदस्ती भी प्राण त्यागना चाहेंगे जब तक कि भगवान की अनुमति नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, केवल वही लोग कर सकते हैं जो इस तरह के योगाभ्यास में बड़े परिपूर्ण हो गए हैं। इसलिए इस पथ को देवयान कहते हैं, देवयान। और दूसरा पथ भी है जिसका वर्णन आगे चल के भगवान श्री कृष्ण श्लोक में करने वाले हैं, और ये पथ सत्वगुण में है और जिस गति की प्राप्ति होती है इसको शुक्ल गति कहते हैं। तो ये ज्ञान योगी शुक्ल गति की प्राप्ति करते हैं देवयान या देव पथ से चलकर। ये पथ जो है बड़े सूक्ष्म पथ हैं, इनको इन आंखों से नहीं देख सकते, हालांकि ये भौतिक हैं लेकिन फिर भी बहुत सूक्ष्म है। अगर हम पूछेंगे कि आत्मा कैसे जाती है किस पथ से, नहीं हम जान नहीं पाएंगे। जैसे हम शास्त्र में वर्णन सुनते हैं कि देवी देवतागण यहां पर आते हैं, श्रीमद् भागवत में पुराणों में बहुत ही जल्दी आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से यहां पर क्षण में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात तो दूर है, जो कि वैकुंठ से आते हैं, हम कह सकते हैं वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी वगैरह देवता है, वो एक क्षण में दो क्षण में कैसे आ सकते हैं ब्रह्मलोक से यहां। ब्रह्मलोक जो है वो इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोक है, इतना दूर है, करोड़ों करोड़ों मील दूर है, और ब्रह्मा जी का वाहन है हंस वाहन। अब आप ऐसे कोई हंस को जानते हैं जो इतनी तेजी से उड़ सकता है कि एक क्षण में हमें ब्रह्मलोक से यहां ले आए। इसका मतलब है कि यह हंस भी असाधारण है और जिस पथ से ब्रह्मा जी यहां आते हैं वो भी असाधारण है। वो सूक्ष्म पथ है, वो आकाश पथ है, आकाश गंगा, आकाश पथ से आते हैं वो, इसलिए जल्दी से फटक से चले आते हैं। उसी तरह से गंगा जी को त्रिपथगामी कहते हैं, मतलब गंगा जी स्वर्ग लोक में भी बहती है, पृथ्वी लोक में भी बहती है और पाताल लोक में भी बहती है। अभी अनेक लोक जो है ब्रह्मांड में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो अगर हम हमारे एक साधारण दृष्टि से देखना चाहेंगे, हम प्रश्न करेंगे कि अरे गंगा जी अगर स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक आती है, और हमने कथा सुनी थी कि शिव जी का नाम है गंगाधर, जिन्होंने गंगा को धारण किया था अपने जटाओं में, ऊपर स्वर्ग लोक से गंगा जल गिरा था और फिर शिव जी के सर पे आया था। तो कैसे गिरा हम वो देख नहीं सकते हैं, आकाश से नहीं आती है, वो अनेक सूक्ष्म पथ से आती है जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से पृथ्वी लोक से जब वो पाताल लोक जाती है तो और एक सूक्ष्म पथ लेकर जाती है। स्वर्ग लोक के जो निवासी होते हैं उनका शरीर बहुत सूक्ष्म होता है, हालांकि भौतिक शरीर है फिर भी बहुत सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म शरीर को भी हम देख नहीं सकते हैं। केवल जब देवता अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जब वो चाहते हैं कि हम उनको देख सके, तब वो अपने हम उनको देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। इसलिए अन्य लोक वहां से यहां आने के जो पथ हैं ये सब सूक्ष्म पथ हैं, इसलिए इसको देवयान कहते हैं। देवयान की के ऊपर जाने से हम शुक्ल गति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर तैयारी योगाभ्यास का कितना महत्व है, लेकिन अष्टांग योग जैसे पद्धतियों में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने गारंटी दिया है कि भक्त की मृत्यु जहां भी हो, किसी भी समय में हो, कोई परवाह नहीं, मैं रक्षा करूंगा, मैं उसको मेरे धाम में ले जाऊंगा। तो इस देवयान के अलावा भगवान श्री कृष्ण इस 25वें श्लोक में और एक पथ का वर्णन करने वाले हैं जिसको पितृयान कहते हैं। पितृयान जिसे हमें कृष्ण गति की प्राप्ति होती है, लेकिन यह कृष्ण गति मतलब श्री कृष्ण गति नहीं, कृष्ण गति मतलब शुक्ल कृष्ण, कृष्ण यह मतलब कृष्ण पक्ष में जब हम त्यागते हैं काला, जब अंधकार का पक्ष होता है, तो हमें इस कृष्ण गति को श्री कृष्ण की गति से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं भगवान इस 25वें श्लोक में क्या कहते हैं, और ये गति उन लोगों के लिए है जो कि कर्म कांड के पथ को स्वीकार करते हैं। बहुत सारे यज्ञ होम इत्यादि करते हैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए इत्यादि। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जो योगी धुए रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। इसको दोहराइएगा। जो योगी पितृलोक, जो कि यमलोक है, यह भी एक ऊंचा लोक है, चंद्रलोक सूर्यलोक स्वर्गलोक ये सब स्वर्गलोक हैं, ऊंचे लोक हैं, और इनको केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह। पुण्यकृताम लोकान मतलब इन लोकों को पुण्यकृताम लोकान कहते हैं, वो लोक जो कि केवल पुण्य करने वाले लोग, पुण्यवान लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जो कर्मकांडी लोग होते हैं, जो इस समय पर प्राण त्यागते हैं, जबकि इन देवताओं का प्रभाव है, कौन सबसे पहला? धुआं, दूसरा रात्रि। धुएं और रात्रि के ऊपर जो अधिष्ठान करने वाले जो देवता हैं, उनके प्रभाव में उनका पथ जो है उसके ऊपर जाते हैं कृष्ण पक्ष में, और 6 महीनों में जब दक्षिणायन का समय है, ऐसे समय पर जो लोग प्राण को त्यागते हैं, तत्र चांद्रमसाम यत्र, वो चंद्र को प्राप्त करते हैं, चंद्रलोक, और फिर से यहां पर लौट कर आते हैं। योगी प्राप्य निवर्तते, फिर लौट कर आते हैं यहां पर चंद्रलोक पे जो जाते हैं। अभी अगर किसी को चंद्रलोक में जाना है तो वास्तव में जाने की पद्धति यहां बतलाई गई है। आजकल वैज्ञानिक लोग रॉकेट से, हवाई जहाज से चंद्रलोक जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद बताया करते थे कि यह संभव नहीं है। अगर भी वो कोई चंद्रलोक गए होंगे तो कोई दूसरे चंद्रलोक में गए, भैया ये चंद्रलोक में नहीं, किसी दूसरे लोक में गए होंगे, सोचा होगा कि ये चंद्रलोक है। चंद्रलोक में केवल पुण्यवान लोग जा सकते हैं, केवल रॉकेट पे थोड़ा डीजल पेट्रोल डाल दिया वहां चले गए नहीं होगा, बड़ा यंत्र है गाड़ी में बैठे, ऐसे नहीं जा सकता कोई। त्रिशंकु की कथा मालूम है ना आपको, त्रिशंकु विश्वामित्र के योग बल पे स्वर्गलोक जाना चाहता था, लेकिन इंद्र ने देखा कि इसके पास पुण्य नहीं है, ये यहां स्वर्गलोक आने के लिए योग्य नहीं है, तो फिर इंद्र ने त्रिशंकु को वापस भेज दिया, जाओ। और फिर से सिर नीचे होते हुए गिर पड़ा त्रिशंकु, और फिर विश्वामित्र ने देखा त्रिशंकु त्राही त्राही कह रहे, बचाओ बचाओ विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र मुनि ने अपने योग बल से को कहा, रोको, उधर ही रुक जाओ, तब मैं इंद्र से मामला निपट लेता हूं, तुम उधर ही रह जाओ। तो बीच में त्रिशंकु रह गए बेचारे वहीं पर, और फिर इंद्र और विश्वामित्र के बीच में संवाद हुआ। विश्वामित्र ने कहा कि प्रवेश दे दो उसको, पर नहीं, क्योंकि इसने पुण्य नहीं किया, कैसे प्रवेश देंगे स्वर्ग लोक में, नहीं तुम्हें देना चाहिए क्योंकि मैंने योग अभ्यास किया है, नहीं दे सकते। अच्छा नहीं दोगे, तो फिर योग विश्वामित्र ने अपने योग बल पर अनेक लोक बनाए, प्राय अनेक, एक अलग सा ब्रह्मांड ही बना दिया। ये सब देखकर सारे देवतागण में घबरा गए, उनका ठीक है आप अलग से स्वर्ग लोक बना दीजिए उसके लिए, तो त्रिशंकु के लिए अलग सा लोक बनाया हुआ है। तब से त्रिशंकु बीच में है। आज भी हमारी साधारण भाषा में भी कहते हैं, अगर कोई ना इधर का ना उधर का रह गया तो लोग कहते हैं ये त्रिशंकु है। तो भक्ति में भी हमें त्रिशंकु नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में, कभी भक्ति थोड़ा बहुत करेंगे, एक माला करेंगे, दो माला करेंगे, फिर नहीं करेंगे, कब मन चाहा तब किया, फिर नहीं किया, नहीं, हमें बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते थे कि ये लोग चांद को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि ये लोग चांद पे गए ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वापस क्या लाए, क्या लाए मालूम है आपको, पत्थर लाए। अब देखिए, पत्थर जाने के लिए वहां जाने की जरूरत है क्या, यहां कोई पत्थरों की कमी है, वहां जाके क्या लाए, पत्थर लाए, थोड़ी मिट्टी लाए, क्या फायदा वहां जाकर। अगर वहां गए भी होंगे, मान लीजिए वो जो कह रहे हैं वो सही है, गए भी होंगे, फायदा क्या हुआ, वहां जाकर कुछ जीवन सुधर गया, वहां जाकर कुछ आप भगवान की प्राप्ति किए क्या, नहीं, तो वहां जाकर क्या लाभ, वही आहार निद्या भय मैथुन वही चलेगा, यहां जो युद्ध कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, वहां जाकर वहीं भी वही करेंगे। कम से कम अभी झगड़ा तो केवल यहां पे है, सीमित है, अब सब जगह जाकर झगड़ा वहां भी करना शुरू कर देंगे, फिर क्या लाभ है वहां जाकर। इसलिए नारद मुनि ने भी व्यास देव को बताया कि इधर उधर भ्रमण करने के बजाय हमें ऐसे चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो कि जगह जगह भ्रमण करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता है, और वो है भगवान की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, और उसके लिए पृथ्वी लोक और खास करके भारतवर्ष सबसे अनुकूल है। लेकिन ऐसे पावन भूमि में जन्म लेने के बाद भी लोग भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए इच्छुक नहीं है, वो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका ही भगवान का धाम बन गया है, अमेरिका ही स्वर्ग बन गया है। तो पृथ्वी लोक से अगर अन्य लोकों में जाना है, यांत्रिक ढंग से नहीं जा सकते, केवल पुण्य करने से ही जा सकते हैं। और वहां पे जो लोग निवास करते हैं वो बड़े आगे बढ़े हुए प्राणी हैं, जीव हैं, मनुष्य देवतागण वहां रहते हैं। और ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि वो लोग 10,000 साल दिव्य साल जीते हैं और उनका हर एक साल हमारे कई हजार साल है, तो उनके जीवन की अवधि समझ लीजिए लाखों की सालों की हो गई। और वहां पर वो लोग सोम रस का पान करते हैं और बहुत भोग करते हैं, दिव्य भोग, दिव्य देव भोगान। ऐसे देव भोगों का आनंद लेकर फिर से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर से यहां पर लौट कर आते हैं। लेकिन जब ये लोग अमेरिका से कहते हैं कि हम चांद पे गए, हमने किसी को देखा नहीं, हम वहां हमारे रॉकेट हम लगाए, आसपास में कोई नहीं था, केवल मिट्टी थे, पहाड़ थे और कोई एक भी प्राणी नहीं था, कीटाणु भी नहीं था वहां पर, ऐसा कहते हैं। लेकिन आजकल कई लोगों ने, अमेरिका से भी जो वैज्ञानिक थे उस समय, उन्होंने किताब लिखे हैं कि इंसान कभी चंद्र पे गया ही नहीं। तो ऐसे भी लोग कहते हैं, केवल भक्त नहीं अन्य लोग भी हैं। तो खैर ये हमारे लिए महत्व की बात नहीं है, वो गए हैं या नहीं गए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम केवल भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, चांद पे जाना। चांद पे भी जाएंगे तो लौट के आना है हमें, कौन से भी लोक में हम जाएंगे, जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उस धाम को, उस लोक को त्याग कर हमें लौट कर यहीं पर आना ही होगा। तो क्यों ना ऐसे जगह चले जाएं जहां से हमें लौट कर नहीं आना पड़े, और वो एक ही जगह है और वो है भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो भगवान के धाम को अगर हम प्राप्त करेंगे तो फिर हमें लौट के आना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं पितृयान, जिससे कृष्ण गति की प्राप्ति होती है। कृष्ण गति मतलब अंधकार की गति, और फिर वहां जाकर चंद्रलोक पर रहकर वापस आ जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान इन दोनों पथों को सारांश में बता रहे हैं। शुक्ल कृष्ण गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यन वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। दोहराइएगा, वैदिक मता। तो भगवान ने यहां पर शाश्वत शब्द प्रयोग किया कि ये जो दो पथ हैं, शुक्ल पथ या शुक्ल गति और कृष्ण पथ या कृष्ण गति, देवयान और पितृयान, ये शाश्वत हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत जब भी यहां है, ये दो पथ हैं। जब भौतिक जगत का संहार होता है तो ये दो पथ नहीं रहते, लेकिन भौतिक जगत का फिर से निर्माण होगा, फिर से ये दो पथ रहेंगे, बद्ध जीवों के लिए या तो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए या स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए। तो जो शुक्ल पथ पे जाते हैं वो यहां लौट कर नहीं आते, लेकिन जो कृष्ण पथ पे जाते हैं वो लौट कर आते हैं। यहां इस बात को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। लेकिन इन दो पथों से विभिन्न एक तीसरा पथ है, और वो है श्री कृष्ण पथ, भक्ति पथ, जो केवल भक्तों के लिए है, जो समय के ऊपर, जगह के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, वातावरण के ऊपर निर्भर नहीं रहता। जब भक्त श्री कृष्ण का स्मरण करता है और प्राण को त्यागता है, असंशय वो भगवान के, निश्चित रूप से भगवान के धाम में चले जाता है, और उसको लेने के लिए विष्णु दूत स्वतः आते हैं और वैकुंठ पथ से उनको लेकर जाते हैं। वैकुंठ पथ जो है वो सत्वगुण का पथ नहीं है, वो आध्यात्मिक पथ है, और वैकुंठ लोक से आने वाले निवासी और वहां का वाहन वो भी सब आध्यात्मिक है। और ऐसे शुद्ध भक्त को विष्णु दूत भगवान के धाम में ले जाते हैं। तो फिर प्रश्न ये आता है, ये कृष्ण पथ और शुक्ल पथ इन दो पथों का वर्णन है, तो भक्त कौन सी दृष्टि से देखता है इन दो पथों को? संक्षेप में इनके बारे में चर्चा 27वें श्लोक में करते हैं। ते श्रुति पार्थ जानन तस योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कृपया दोहराइएगा। हे भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं हम सबके लिए। ठीक है अर्जुन, ये दो पथ मैंने बनाए हैं, कर्मकांडियों के लिए कृष्ण पथ बनाया है, ज्ञान योगियों के लिए शुक्ल पथ बनाया है, लेकिन तुम्हारे लिए इन दो पथों की चिंता नहीं है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और तुम्हारे जैसे जो इतने सारे मेरे भक्त हैं उनको भी इन दो पथों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भक्तों को इन दो पथों की जानकारी है, लेकिन फिर भी इससे वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि ये दोनों पथ अंततः कष्ट के पथ हैं, इसलिए वो केवल मेरी प्राप्ति के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, सदैव केवल मेरे भक्ति में तुम स्थिर रहो। योग युक्तो भव अर्जुना, केवल मेरे भक्ति में तुम स्थिर रहना, मेरे भक्ति पथ को मत छोड़ना, और इससे तुम्हारे जीवन की समसिद्धि हो सकती है। तो इस चर्चा का निष्कर्ष क्या रहा हमारे लिए? जानने के लिए हम जानते हैं कि ये दो पथ हैं योगियों के लिए, कर्मकांडियों के लिए, जिससे कि वो अलग अलग स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें इन दो पथों से कुछ लेना देना नहीं है। भक्तों को वैकुंठ पथ है, अलग पथ, इसलिए हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए, उनका पवित्र नाम उच्चारण करना चाहिए, और पूरा विश्वास रहना चाहिए मन में कि जब हमारे अंत का समय आएगा तब स्वयं भगवान के दूत हमें आकर वापस भगवान के शरण में ले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? ये है कि योगी लोग अपने प्राण त्यागने का समय कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्राण त्यागना ये तो काल के वश में है, तो योगी लोग इस चीज को वश में कैसे कर सकते हैं? वैसे अपने प्रारब्ध के अनुसार जब हम जन्म लेते हैं तो ये निर्धारित होता है कि हमें इस जन्म में कितने सांस लेने हैं, और उतने ही सांस हम जी सकते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, अपने सांस पर नियंत्रण रखते हैं और इस तरह से अपने जीवन को लंबा या बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसलिए हम देखते हैं ऐसे कई योगियों की कहानियां सुने होंगे आपने, जिन्होंने सांस एक साल तक नहीं लिया, बिना सांस लिए बैठे रहे, और इसलिए उनकी जीवन की अवधि बहुत बढ़ गई। इसका मतलब यह नहीं कि हम भी जाकर नाक बंद करके बैठे हैं, चलो हमारी भी जीवन की अवधि बढ़ जाएगी। लंबा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं, या कम उम्र का जीवन जीने से भी कोई फायदा नहीं अगर हम भक्त न हो। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो जितने भी सांस हमारे लिए भगवान ने लिखे हैं इस जन्म में उतने हम स्वीकार करेंगे, और जब मृत्यु आएगा आएगा, हम सामना करेंगे बड़े खुशी से, क्योंकि भगवान के भक्त के लिए मृत्यु ये मृत्यु नहीं है, ये भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है, एक स्वागत का मौका है। भगवान का भक्त कभी मृत्यु से डरता नहीं है, अभक्त सदैव डरा हुआ रहता है मृत्यु से। तो योगी लोग अपने योगाभ्यास के बल पर अपने मृत्यु के क्षण को नियंत्रण में रख सकते हैं। भीष्म देव, उनको वरदान मिला था इच्छा मरण की, वो तय कर सकते थे कि कब उनको मरना है, कब प्राण को त्यागना है। हम चर्चा करना चाहते थे कथा को, लेकिन समय काफी हो गया। जब वो तीरों के शैया पर लेटे हुए थे रणभूमि पर, तो उस समय श्री कृष्ण और पांडव उनके पास आए। भीष्मदेव वास्तव में उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब उत्तरायण आएगा तब मैं प्राण त्यागूंगा, क्योंकि दक्षिणायन का समय था, अभी प्राण त्यागूंगा अशुभ घड़ी है। वैसे भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भक्त को जैसे हमने चर्चा की थी पहले, वो इन घड़ियों के ऊपर, समय के ऊपर वो निर्भर नहीं है। लेकिन फिर भी भीष्मदेव बाहरी दृष्टि से दिखाना चाहते थे ऐसे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए उनके पास। भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव का उद्धार तो उन्होंने कर ही दिया था। भीष्मदेव चाहते थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेते हुए मेरा प्राण त्याग दो। और जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए तो उन्होंने भीष्मदेव से कहा, ऐसे महाभारत में वर्णन है कि हे भीष्म, तुम्हारे अभी 56 दिन बाकी हैं प्राण त्यागने के लिए, क्योंकि अभी तक उत्तरायण शुरू नहीं हुआ, उत्तरायण के लिए अभी तक 56 दिन है। तो 56 दिन तुम जियोगे, तो इन दिनों में तुम युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देना। सुंदर संवाद हुआ जिसका वर्णन करने के लिए आज समय नहीं। फिर भीष्मदेव ने प्रतीक्षा की, और उत्तरायण के समय जब शुभ घड़ी आई, जैसे कि श्लोक में हमने वर्णन किया था, वो देवयान से होते हुए गए, लेकिन ब्रह्मलोक नहीं गए, वो गए वैकुंठ धाम, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, क्या हम 8वें अध्याय का सिर्फ पाठ पठन करेंगे तो क्या हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? किसी भी अध्याय का या सारे भगवद गीता का केवल अगर हमने पाठ किया तो कोई गारंटी नहीं है कि हम भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि हम कैसे पाठ करते हैं। भक्ति भाव से पाठ करते हैं, साक्षात्कार से पाठ करते हैं, या तोते की तरह पाठ करते हैं। तोता जानते हैं ना, ओपट। अगर हमने भक्ति भाव से किया, अगर हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम रहा, तो चाहे हम एक श्लोक पाठ करें, एक अध्याय पाठ करें, या पूर्ण गीता पाठ करें, हमारे भगवान के धाम जाना निश्चित है। तो हम लोग क्यों पाठ करते हैं? क्योंकि इसका पाठ भक्ति भाव करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमें भगवत ज्ञान मिल जाता है, भगवत भक्ति का उदय होता है। लेकिन साथ साथ गीता में भगवान ने हमें आदेश क्या दिया है? सततम कीर्तयन्तः माम, कि हमें सतत उनका कीर्तन करते रहना चाहिए, उनका नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। मन मना भव मत भक्तो, हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, केवल पाठ करना नहीं लेकिन भगवत प्रेम को जागृत करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए जो भी कुछ अनुकूल है, हम इन चीजों को स्वीकार करते हैं, और भगवत गीता का पाठ करना अनुकूल है, इसलिए हम ये भी करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? पहला प्रश्न ये है, शुक्ल पक्ष या शुक्ल पथ और कृष्ण पथ, ने बताया कि दो पथों में से श्रेष्ठ शुक्ल पथ है, लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ वैकुंठ पथ है। तो ऐसा क्यों है कि कृष्ण पथ वो निम्न श्रेणी का है, या कृष्ण है, कृष्ण का पथ है? तो आपको जवाब दीजिए। ये कृष्ण शब्द पक्ष, कृष्ण पक्ष से संबंधित है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, जैसे हमने प्रवचन में बताया। जिस पक्ष में जीव त्यागता है अपने शरीर को, अगर वो कृष्ण पक्ष है और उस दक्षिणायन का समय है इत्यादि, तो फिर उसे कृष्ण गति कहते हैं, श्री कृष्ण की गति नहीं, वो कृष्ण अलग है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न कि अगर भीष्म देव दक्षिणायन में अपना प्राण त्यागते तो क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं होते? अवश्य हो सकते थे, क्योंकि वो तो भगवान के प्रिय पार्षद हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, निश्चित रूप से वो भगवान के धाम को जाते हैं। लेकिन भीष्मदेव भी बाहरी लीला कर रहे हैं, शास्त्रों में ऐसे बताया है, अलग अलग पथ हैं, तो उन्होंने भी ये पथ को स्वीकार किया, समय की प्रतीक्षा की। लेकिन वास्तव में उनके लिए भी तो विष्णुदूत आए, उनको लेकर चले गए उनके धाम में। इस भगवान के भक्त के लिए वास्तव में घड़ी का शुभ घड़ी अशुभ घड़ी की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, पुण्यवान का मतलब क्या है? जो व्यक्ति पुण्य करता है। इस संसार में दो तरह के कार्य हो सकते हैं, एक है पाप और दूसरा है पुण्य। पाप मतलब वो कार्य जो कि शास्त्रों के नियमों के खिलाफ है, जैसे चोरी करना या झूठ बोलना, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, प्राणियों की हत्या करना, और ऐसे कई चीज हैं जो पुण्य है, जैसे कि गरीबों को मदद करना, कुएं खोदना दूसरों को पानी देने के लिए, सड़क पे पेड़ लगाना लोगों को, प्रवासी यात्रियों को छांव देने के लिए, ये सब पुण्य कार्यों के उदाहरण हैं। पाप करने से अधोगति की प्राप्ति होती है, हमें नरक में जाना पड़ता है इन कर्मों का फल भुगतने के लिए, और फिर उसके बाद में हमें नीच योनियां मिलती हैं, पशु पक्षी की योनियां, और इन पापों के फलस्वरूप हमें बहुत सारे दुख भुगतने पड़ते हैं इन नरक लोकों में और इन नीच योनियों में, फिर हमें मनुष्य गति प्राप्ति होती है। और पुण्य करने से हमें ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक इत्यादि, और वहां पे पुण्यों के आधार पर हमें बहुत स्वर्गीय भोग करने का अवसर मिलता है, और वहां भोग जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर हमारा भोग भी समाप्त हो जाता है, हमें फिर से यहां आना है होता है। जो ऐसे पुण्य के कार्य जो लोग करते हैं कर्मकांड शास्त्रों के आधार से, उनको पुण्यवान कहते हैं। तो ऐसे पुण्यवान लोग ऊर्ध्व गति की प्राप्ति करते हैं इसी ब्रह्मांड के भीतर। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनको न तो पाप से न पुण्य से कुछ लेना देना है, उनको केवल भगवान की भक्ति से मतलब है, क्योंकि दोनों पाप और पुण्य इस भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित है, दोनों ही हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के ही रखते हैं। केवल भगवान की भक्ति वही हमें एकमात्र इस भव बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कराकर भगवान के धाम में पहुंचा सकती है। ठीक है, अभी हम दर्शन के समय थोड़ा कीर्तन करेंगे 10 मिनट, उसके बाद में सबके लिए प्रसाद है। तो आप सबने इतने ध्यान से प्रवचन सुना, बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही प्रवचन के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, दर्शन इत्यादि के लिए यहाँ पर आते रहेंगे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.